नमस्कार, भारत 28 जून दिन रविवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल के दौरान भगवा झंडे के इस्तेमाल का मामला गरमाया, बीजेपी और विहिप आंदोलन के मूड में।
हम लोग यहां इलाहाबाद के मंडलायुक्त से मिलकर हम लोगों की भावनाएं उससे इनको अवगत कराया गया कि कार्रवाई हो, अन्यथा फिर से हम आंदोलन और सत्याग्रह दोनों करेंगे।
ग्रीस को और राहत नहीं, 30 जून तक चुकाना है IMF का कर्ज। सुनवाएंगे आपको ट्यूनिशिया में हुए चरमपंथी हमले में बच गए कुछ लोगों की आप बीती, और न्यूज मेकर्स में बातचीत दो भाइयों से जिन्होंने IIT की परीक्षा तो पास कर ली है लेकिन एक ख्वाहिश अभी दबी हुई है।
मैं बहुत बड़ा अमिताभ बच्चन का फैन हूं। जी अमिताभ जी, सर मैं आपका इंतजार कर रहा हूं आपके फोन का, आज जरूर फोन करें, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं।
लेकिन पहले सुनिए BBC समाचार।
BBC समाचार अशोक कुमार से। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में पुलिस की एक मॉक ड्रिल के दौरान भगवा झंडे के इस्तेमाल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और ऐसा न होने पर आंदोलन की धमकी दी है। पिछले दिनों पुलिस ने इलाहाबाद में दंगे से निपटने की तैयारियों के तहत एक अभ्यास किया जिसमें दंगाई बनाए गए पुलिसकर्मियों के हाथों में भगवा झंडे थे। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सीप्रास ने ग्रीक लोगों से कहा है कि वो कर्जदाताओं की तरफ से दिए गए प्रस्तावों को जोरदार तरीके से ठुकरा दें। सीप्रास कर्ज में डूबे ग्रीस को राहत पैकेज यानी बेलआउट देने वाले इन प्रस्तावों को अपमानजनक बताते हैं और इस मुद्दे पर उन्होंने 5 जुलाई को एक जनमत संग्रह कराने का फैसला किया है। ग्रीक प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोपीय संघ, यूरोपीय केंद्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को एहसास होना चाहिए कि ग्रीस आत्मसमर्पण नहीं करेगा। ग्रीक संसद ने जनमत संग्रह कराने को मंजूरी दे दी है। उधर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टीन लागार्द का कहना है कि यूरो जोन के बेलआउट पर ग्रीस का जनमत संग्रह अमान्य होगा क्योंकि मौजूदा बेलआउट की समय सीमा 30 जून को खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर ग्रीस के लोग यूरो जोन में रहने और अर्थव्यवस्था को बहाल करने के हक में जोरदार तरीके से मत देते हैं तो कर्जदाता नए प्रयास करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रीस के पास अब भी समय है कि वो यूरो जोन के प्रस्ताव को मान ले और अपना ख्याल बदल दे।
The purpose of what we are doing all together is to actually restore
जो कुछ भी हम मिलकर कर रहे हैं उसका मकसद असल में ग्रीस में स्थिरता बहाल करना है, उसकी वित्तीय स्वतंत्रता को बहाल करना है, मिसाल के तौर पर जैसा पुर्तगाल और आयरलैंड में किया गया, और हम यही ग्रीस के मामले में भी कर रहे हैं, लेकिन ग्रीस को भी इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। ये थे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टीन लगार्द के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ताइवान के अधिकारियों ने कहा है कि राजधानी ताइपी के पास एक वाटर पार्क में आग लगने से कम 200 लोग घायल हो गए हैं। खबरों के मुताबिक 80 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। CNA समाचार एजेंसी के अनुसार कुछ लोग 40% तक जल गए हैं। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर शहर माइदेगुरी में हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं। आत्मघाती हमलावर महिलाएं एक अस्पताल में घुसने की कोशिश कर रही थीं कि उन्हें सुरक्षा बलों ने रोका, तभी उन्होंने खुद को उड़ा लिया। हमले में कम से कम 16 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। अधिकारी इस हमले के लिए इस्लामी चरमपंथियों को जिम्मेदार मान रहे हैं और फ्रांस में अधिकारी उस व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं जिस पर अपने मैनेजर का सिर कलम करने का संदेह है। BBC समाचार।
तारीख 28 जून दिन रविवार। नमस्कार, भारत में अभिवादन स्वीकार कीजिए पंकज प्रियदर्शी का। कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में पुलिस की तैयारियों की जांच के लिए हुई मॉक ड्रिल में कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथों में भगवा झंडा थमाने की घटना पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार की इस घटना को लेकर पुलिस से तकरार में विश्व हिंदू परिषद के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी कूद गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में राज्यव्यापी आंदोलन की भी धमकी दी है। एक रिपोर्ट के साथ हैं समीर आत्मज मिश्र।
दंगे रोकने की तैयारी देखने के लिए शुक्रवार को इलाहाबाद की पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल हुआ था और नकली दंगाइयों के हाथों में भगवा रंग के झंडे थे। ये नकली दंगाई दरअसल पुलिस के ही जवान थे। पहले विश्व हिंदू परिषद और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस पर ऐतराज़ जताया और कहा कि ये समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी शनिवार को इलाहाबाद पहुंचे और कहा कि रविवार को पुलिस कप्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना देंगे। इलाहाबाद के भाजपा सांसद केशव मौर्य कहते हैं,
सरकार के इशारे पर यहाँ के जो पुलिस के प्रमुख हैं, उन्होंने जानबूझ करके हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए जो त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, तप का प्रतीक है, उस भगवा का इस्तेमाल क्यों किया इन्होंने, तो करना ही था तो खड़ा कर लेते, सफेद कर लेते, किसी का कोई ऐसा जवाब नहीं था। हम लोग यहाँ इलाहाबाद के मंडलायुक्त से मिलकर हम लोगों की भावनाएं उससे उनको अवगत कराया गया कि कार्रवाई हो, अन्यथा कल से हम आंदोलन और सत्याग्रह दोनों करेंगे।
वहीं जब बीबीसी ने इलाहाबाद के एसएसपी के एस इमैनुअल से बात की तो उनका कहना था कि झंडे का केसरिया रंग दरअसल इलाहाबाद जोन की पुलिस का आधिकारिक रंग है, इसका किसी पार्टी या संगठन के झंडे के रंग से कोई वास्ता नहीं है।
ये जो फ्लैग्स है ये हमारे यूपी पुलिस इलाहाबाद जोन का कलर है, इसके भी बहुत सारे फ्लैग्स हमेशा रखे रहते हैं। अब वो उनका कहना है कि वो उनका कलर है, हमारा तो कोई, अगर वो कलर है तो हो सकता है, लेकिन हमारा इस तरह का कोई इंटेंशन तो नहीं है।
लेकिन भाजपा ये मानने को तैयार नहीं है। केशव मौर्य एसएसपी पर बार बार बयान बदलने का आरोप लगाते हैं।
ये रंग का झंडा जोन की पुलिस का ये इशू नहीं है, ये तो इशू हर पल जो बयान बदलने की क्रम है उनको लगा होगा कि अब ये रास्ता अपनाना चाहिए। तब जब भारतीय जनता पार्टी भगवा के सम्मान में भाजपा मैदान में आ गई तब इन्होंने ये रास्ता अपनाया कि अब हम ये बात बोले।
वहीं समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर इस मुद्दे को बेवजह तूल देने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं,
हमारा विरोध तो वैचारिक विरोध है और भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई बहाना ढूंढना चाहती है उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था पैदा करने के लिए, अराजकता पैदा करने के लिए और सांप्रदायिक उन्माद भड़काने के लिए। रंग से कोई मतलब नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी बहाना ढूंढ रही है, बहाना ढूंढ रही है और पिछले 3 साल से बीजेपी प्रदेश में है।
उधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर 2 जुलाई तक लगातार सभी जनपदों में विभिन्न जगहों पर भगवा और भाजपा के झंडे के साथ प्रदर्शन करेगी और 4 जुलाई को विधानसभा के सामने प्रदेश के सभी सांसद धरना देंगे।
आपको याद होगा कि पिछले साल गुजरात की सूरत पुलिस ने मॉक ड्रिल के दौरान नकली आतंकवादी को एक खास समुदाय की टोपी पहनाई थी, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। बाद में मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को इस मामले पर माफी भी मांगनी पड़ी थी। और अब चर्चा करते हैं भारत प्रशासित कश्मीर की, जहां सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में कई दिनों से पढ़ाई लिखाई स्थगित है, क्योंकि एक छात्र की गिरफ्तारी के विरोध में छात्रों ने आंदोलन छेड़ रखा है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए छात्र के संबंध चरमपंथियों से है, जबकि छात्रों का कहना है कि इन्हें योगा डे के विरोध में प्रदर्शन करने के कसूर में गिरफ्तार किया गया है। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
भारत प्रशासित कश्मीर में पिछले 25 वर्ष में पहली बार कश्मीर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पुलिस का पहरा है। प्रदर्शनकारियों का आंदोलन जारी है, हॉस्टल खाली हैं और शिक्षा का कैलेंडर स्थगित किया गया है। प्रशासन ने घोषणा की है कि 30 जून तक यूनिवर्सिटी बंद रहेगी। कुछ दिन पहले जब पुलिस ने यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट के छात्र मुजम्मिल डार को चरमपंथियों के साथ संपर्क के आरोप में गिरफ्तार किया तो प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। छात्रों और मुजम्मिल के परिवार का कहना है कि वो निर्दोष हैं और इनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने 21 जून को योगा डे के अवसर पर योगा के विरोध में प्रदर्शन किया था। गिरफ्तारी के विरोध में कैंपस में प्रदर्शन हुए तो पुलिस ने कैंपस के अंदर घुसकर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और हवा में फायरिंग की। प्रशासन ने कल रात यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में रहने वाले सभी छात्रों और छात्राओं को कमरे खाली करने का आदेश दिया। इस पर स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई और छात्रों और छात्राओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया।
हॉस्टल की लड़कियों को घर से उस हॉस्टल से बाहर निकाला, वो रात 10 बजे तक सड़क से फेर रही थी।
तब तक यूनिवर्सिटी भी बंद रहेगी और इसी को भी रिजाइन करना पड़ेगा।
इन्होंने हम पे गोलियां बरसाई।
मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैंने रोजा रखा था, इसी तरह मेरे बाकी जो मेरे कोलीग है उन्होंने भी रोजा रखा था, तो उस दौरान उन्हें शेलिंग की।
एक तरफ से वीसी साहब ये कहते हैं कि एकेडमिक माहौल इन सब चीज़ों से ख़राब होता है, लेकिन फिर दूसरी तरफ खुद ही अपने ही स्टूडेंट्स पे वो फायर ओपन करवाते हैं, टीयर गैस शेलिंग करवाते हैं, तो उससे भी तो एकेडमिक माहौल ख़राब होता है। जब वो अपने स्टूडेंट्स को बहस या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की गुंजाइश नहीं देंगे तो लाजमी बात है स्टूडेंट जो है अपनी बात कहने का कोई और तरीका ढूंढेंगे।
गौरतलब है कश्मीर की यूनिवर्सिटियों या कॉलेजों में छात्रों को यूनियन बनाने की या राजनीतिक मुद्दों पर बहस करने की अनुमति नहीं है। ये प्रतिबंध 25 साल से है। کالجوں اور یونیورسٹیوں میں آئے روز پردرشن ہوتے ہیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ یونیورسٹی میں اتنے دنوں تک کام کاج ٹھپ رہا۔ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں اس اشانتی کا کارن کیا ہے؟ میں نے پوچھا سینئر پترکار اور وشلیشک مسعود حسین سے۔
جب گرون اپ بچوں کو سوچنے یا اپنے مسائل پر تحقیق یا تبصرہ کرنے یا ان مسائل کا حل ڈھونڈنے سے روکا جاتا ہے تو کنفلکٹ ہو جاتا ہے، اور یہ کنفلکٹ کبھی بہت بری صورتحال بھی اختیار کر سکتا ہے۔
اس بیچ کل جمعہ کی نماز کے بعد ایتہاسک جامع مسجد کے اندر نعرے بازی کرنے والے یوکوں پر پولیس نے آنسو گیس کے گولے پھینکے اور مسجد کے صحن میں گھس کر ان کا لاٹھی چارج کیا۔ حریت کانفرنس گاف کے نیتا سعید علی گیلانی کو جمعہ کی نماز کے لیے باہر جانے کی انومتی نہیں دی گئی۔ ان گھٹناؤں پر میرویز عمر فاروق اور دوسرے الگاؤوادیوں نے کڑی پرتکریا جتائی ہے، اور سری نگر میں سرکار کی زیادتیوں کے ورودھ میں ہڑتال کی گئی جس سے عام جن جیون پربھاوت ہو گیا۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
تو یونیورسٹی میں پڑھائی بند ہے اور پردرشن چل رہے ہیں۔ اور اب رخ کرتے ہیں انتراشٹریہ خبروں کا۔ گریس کا آرتھک سنکٹ دنوں دن گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ یورو زون کے وت منتریوں نے آرتھک راحت کارکرم کو 30 جون سے آگے بڑھانے کا گریس کا انوروھ ٹھکرا دیا ہے۔ 30 جون تک آئی ایم ایف کا قرض چکانے کے لیے گریس کو 1.5 یعنی 1.5 ارب یورو دینے ہیں۔ کیا کیا مشکلیں پیش آ رہی ہیں گریس کے سامنے، سنیے اشوک کمار سے۔
لمبے سمے سے سنکٹ میں گھرے گریس پر پھر دیوالیاں ہونے کا خطرہ منڈرانے لگا ہے، کیونکہ وہ فی الحال اس استھتی میں نہیں دکھتا کہ 30 جون تک انتراشٹریہ مدرا کوش سے لیے گئے قرض میں سے 1.7 ارب ڈالر کی ادائیگی کر پائے، اور ایسا نہ کر پانے کی استھتی میں اسے اور قرض ملنا مشکل ہوگا۔ اس سے ایک طرف گریس جہاں یورپی ساجھا مدرا یورو کو چھوڑ سکتا ہے، دوسرا اس کی ارتھ ویوستھا دھوست ہو سکتی ہے۔ یورو زون کے وت منتریوں کے سموہ کا کہنا ہے کہ یہ ذمہ داری گریس کی ہے کہ وہ اپنے وعدے نبھائے۔ یورو گروپ کے چیئرمین یرون ڈائسل بلوم:
It is the responsibility of the Greek government in any situation.
یہ ذمہ داری گریک سرکار کی ہے کہ وہ وتیہ قرض داتاؤں سے کیے گئے اپنے وعدوں اور ذمہ داریوں کو ہر حال میں نبھائے، اور اس میں انتراشٹری مدرا کوش سے لیا گیا رن سب سے پہلے آتا ہے۔ اتنے سالوں میں یورو زون نے گریس کو آسان دروں اور شرطوں پر بہت بڑی مدد دی ہے، لیکن یہ ذمہ داری کی بات ہے اور اس سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ گریس نے اپنے موجودہ بیل آؤٹ یعنی راحت پیکیج کی سمے سیما 30 جون سے بڑھا کر کم سے کم 5 جولائی تک کرنے کو کہا ہے، تاکہ وہ اپنے یہاں تازہ بیل آؤٹ ڈیل پر جنمت سنگرہ کرا سکے، لیکن اس کی یہ مانگ نہیں مانی گئی۔ گریک وت منتری یانس فیرو فاکس نے یورو زون کے اس فیصلے کی کڑی آلوچنا کی ہے۔ بیل آؤٹ کی سمے سیما کچھ دن یا کچھ ہفتے بڑھانے کے ہمارے آگرہ کو نہیں مانا گیا، تاکہ گریک لوگ نئے پرستاؤ پر اپنا جنمت دے سکیں۔ اس سے سدسیہ ساجھیدار دیشوں کے لوک تانترک سنستھا کے طور پر یورو زون کی وشوسنیتا کمزور ہوگی۔ یہ تھے گریک وت منتری کے شبد۔ گریس کو ملنے والا نیا بیل آؤٹ پیکج 7.2 ارب یورو کا ہے، لیکن یہ گریس کو تبھی ملے گا جب وہ اپنی سماجک یوجناؤں میں کٹوتی کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکس دروں میں اضافہ کرے۔ کڑے وتی انوشاسن اور آرتھک سدھاروں کی شرطوں کو گریک پردھان منتری الیکسس سیپراس نے اپمان جنک بتایا ہے۔ کئی لوگ اس جنمت سنگرہ کو یورپی سنگھ میں رہنے یا پھر نہ رہنے کا جنمت سنگرہ بھی کہہ رہے ہیں، حالانکہ ایتھنس میں لوگوں کی رائے اس پر ملی جلی ہی ہے۔ بیل آؤٹ پر میرا ووٹ تو ہاں ہی ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر ہم یورپ سے باہر ہو گئے تو لٹ کے رہیں گے، ہماری سیماؤں پر کئی طرح کے خطرے ہیں۔ پردھان منتری الیکسس سیپراس بہت ہی غیر ذمہ دار ہیں۔ جب وہ لوگوں سے ووٹ مانگ رہے تھے تو انہوں نے یہ نہیں بولا تھا کہ جنمت سنگرہ کرائیں گے، اگر بتا دیتے تو انہیں کوئی ووٹ نہیں دیتا۔ یہ لوک تانترک راستہ ہے، وہ لوگوں کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو کیا برا ہے، اب لوگوں کے ہاتھ میں ذمہ داری ہے۔ دوسری طرف گریس میں لوگ بڑی سنکھیا میں بینک اور اے ٹی ایم مشینوں سے پیسے نکالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ راجدھانی ایتھنس میں ایک بینک نے ایک کھاتے سے 3,000 یورو سے زیادہ رقم نکالنے پر روک لگا دی ہے، جبکہ کئی اے ٹی ایم مشینوں میں دھن ہی نہیں ہے۔
گریس کا آرتھک سنکٹ۔ اب چرچا کرتے ہیں ٹیونیسیا کی۔ شکروار کو ایک بیچ پر ہوئے حملے کے بعد وہاں سے ہزاروں پریٹکوں کو نکالا جا رہا ہے، جن میں سے زیادہ تر یوروپی ہیں۔ لوک پریہ پریٹن ستھل سوس میں ہوئے اس حملے میں 38 لوگ مارے گئے تھے۔ مرتکوں میں 15 برطانیوں کے علاوہ جرمنی، بیلجیم اور آئرلینڈ جیسے یوروپی دیشوں کے کئی ناگرک بھی شامل ہیں۔ جن دیشوں کے ناگرک حملے میں مارے گئے ہیں وہاں غم کا ماحول ہے۔ حملے میں بچ گئے کچھ لوگوں نے اپنے انوبھو ساجھا کیے۔ سمیر آتمج مشر سے سنیے ان کی داستان۔
مینچسٹر کی رہنے والی برطانی پریٹک اولیویا لیتھلی بتاتی ہیں کہ جب گولی باری شروع ہوئی تو وہ لوگ ہوٹل کے اندر ہی تھے۔
We heard shots from inside.
ہم نے اندر سے گولیوں کی آواز سنی جو کہ سیڑھیوں کے نیچے سے آ رہی تھی۔ ہم لوگ لابی میں تھے، تبھی کوئی چلایا وہ اندر ہیں بھاگو، اور پھر ہم گولیوں کی رفتار سے بھی شاید تیز رفتار سے بھاگنے لگے۔ ایلیزابیتھ او برائن ڈبلن کی رہنے والی ایک مہیلا ہے جو کہ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ چھٹیاں منانے آئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زندگی بچانے کے لیے سبھی کو بے تحاشا بھاگنا پڑا۔ ہم لوگ بیچ پر تھے، میرے بیٹے سمندر میں نہا رہے تھے اور میں ترنت ہی سمندر سے باہر آئی تھی، لیکن 12 بجے ہوں گے اور میں نے اپنے سے قریب 500 میٹر کی دوری پر دیکھا کہ گرم ہوا کا ایک غبارہ پھٹ گیا ہے اور پھر تابڑ توڑ گولی باری ہونے لگی۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوٹل کی اور بھاگنے لگی اور سرکشا بل کے جوان بھی چلا رہے تھے بھاگو۔ نارفاک کے 52 ٹونی کیلگھم بھی حملے میں بچنے والے خوش قسمت لوگوں میں سے تھے، لیکن وہ اور ان کی پتنی گولیوں سے بری طرح سے گھائل ہو گئے۔ میں نے کوریڈور کے نیچے دیکھا اور وہاں کم سے کم دو انیہ مہیلائیں تھیں جو مری پڑی تھیں۔ داہنی اور ایک چھوٹے سے دفتر میں ایک یوا ویکتی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے بغل میں ہی اس کا ہاتھ پکڑے اس کی مہیلا متر مری پڑی تھی۔ میں نے اس سے کہا، کیا تم نے اس کی دھڑکن دیکھی؟ میں نے اس کی دھڑکنیں دیکھی جو کہ بند پڑی تھی۔ اس ویکتی نے روتے ہوئے بتایا کہ ہم 2 ہفتے میں شادی کرنے والے تھے اور پھر وہ مر گئی۔
اور اب جان لیتے ہیں کہ دیش اور دنیا کی کن خبروں پر رہے گی ہماری نظر۔
پردھان منتری نریندر مودی آج پھر ریڈیو پر من کی بات کریں گے۔ یہ 8واں موقع ہے جب مودی ریڈیو کے ذریعے جنتا سے مخاطب ہوں گے۔ آج ہی پی ایم مودی جھارکھنڈ کے ہزاری باغ ضلع میں بھارتیہ کرشی انوسندھان سنستھان کے پریشد کی آدھارشلا رکھیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے چناؤ کھیتر بنارس جائیں گے، جہاں وہ کاشی ہندو وشو ودیالیہ کے ٹروما سینٹر کا ادگھاٹن کریں گے۔ ودیش منتری سشما سوراج تھائی لینڈ کے دورے پر ہیں، جہاں وہ وشو سنسکرت سمیلن میں حصہ لے رہی ہیں۔ ہاکی ورلڈ لیگ میں آج بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا، اور گریس کا آرتھک سنکٹ انتراشٹری سرخیوں میں بنا رہے گا۔ ساتھ ہی پریٹن استھل سوس میں ایک بیچ پر حملے کے بعد اب ٹیونیشیا میں سرکار کئی سرکشا قدم اٹھا رہی ہے۔
ایک بار پھر لوٹتے ہیں بھارت کی خبروں کی اور بات کرتے ہیں مدھیہ پردیش کی، جہاں اٹارسی ریلوے جنکشن کی ریلوے جنکشن میں 17 جون کو روٹ ریلے انٹر لاکنگ سسٹم میں آگ لگ گئی تھی، لیکن اب بھی استھتی میں کوئی سدھار نہیں ہے۔ روز بڑی سنکھیا میں ٹرینوں کو رد کیا جا رہا ہے اور کئی ٹرینوں کا مارگ پریورتت کر دیا گیا ہے۔ ریلوے کا نقصان کروڑوں روپیے میں پہنچ چکا ہے۔ سریا نیازی کی بھوپال سے رپورٹ۔
اٹارسی جنکشن کے روٹ ریلے انٹر لاکنگ سسٹم میں 10 دن پورو بھیشن آگ لگ گئی تھی۔ آگ سے پورا سسٹم جل کر خاک ہو گیا۔ اس کے چلتے ریلوے کو اس روٹ سے گاڑی چلانے میں بھاری دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سسٹم کو واپس پٹری میں لانے کے لیے لگ بھگ 1000 وشیشجوں کی ٹیم دن رات جٹی ہے، تاکہ کسی طرح سے استھتی کو سامان کیا جا سکے۔ پچھلے 10 دنوں میں 600 ٹرینوں کو رد کیا گیا ہے، اور وہیں 300 ٹرینوں کو ڈائیورٹ کر کے چلایا جا رہا ہے۔ ریلوے اب تک کروڑوں روپے ٹکٹ کینسل ہونے کی وجہ سے واپس کر چکا ہے، لیکن اس سسٹم کو شروع کرنے میں ابھی بھی وقت لگنے کی بات کی جا رہی ہے۔ سینٹرل ریلوے کے پی آر او پیوش ماتھر بتاتے ہیں کہ اس کو ٹھیک ہونے میں 23 جولائی تک کا وقت لگے گا۔
23 جولائی تک ہوگا اور پورے کام لگے گئے۔ ہم 900 سے زیادہ کرمچاری اور 55 ادھیکاری جو ہے اراؤنڈ دا کلاک کام کر رہے ہیں۔ نقصان ایسا ہے وہ کیلکولیٹ نہیں کیا، لیکن ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ 17 تاریخ سے لے کے 24 تاریخ تک ہم نے لگ بھگ 17 کروڑ کا ریفنڈ دیا ہے۔
لیکن اس راستے سے سفر کرنے والے لوگوں کی مشکلیں کم نہیں ہیں۔ ہر روز کئی ٹرینوں کو کینسل کیا جا رہا ہے یا پھر پریورتت مارگ سے چلایا جا رہا ہے۔ وہیں انہیں اس بات کی جانکاری بھی نہیں مل پا رہی ہے کہ کون سی ٹرین کب پہنچے گی۔ पिछले 10 दिनों से ज्यादातर ट्रेनें लेट चल रही हैं।
ऐसा है जी, गाड़ी डेली लेट आती है, डेली, ठीक है। फैक्ट्री लेट हुई, फैक्ट्री से तनख्वाह कटी, ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। गाड़ी पहले तो लेट आती है, उसके बाद यहाँ से लोड निकाल देते हैं आगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है।
सारी ट्रेनों का जो शेड्यूल गड़बड़ा गया है, लोग अपने अपने ट्रेन के टिकट वगैरह कैंसिल करवा रहे हैं। मुझे अपने परिवार के साथ उज्जैन जाना था, पता ये चल रहा है कि कौन सी ट्रेन कब रद्द हो जाए मालूम ही नहीं है साहब। यहाँ पे रेलवे में भी जो है कोई आपको संतोषप्रद उत्तर देने वाला नहीं है।
माना जा रहा है कि जब तक स्थिति सामान्य होगी तब तक रेलवे को इस आग की वजह से लगभग 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका होगा। इस हादसे में अब तक कोई भी FIR दर्ज नहीं की गई है। रेलवे ने इस मामले में एक जांच दल गठित कर दिया है और उसी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
ये थे भोपाल से सुरय नियाजी और अब समय है अखबारों की समीक्षा का, अशोक कुमार के साथ।
जी पंकज जी, विवादों में घिरी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल दिल्ली का दौरा किया उन्होंने और ये खबर सभी अखबारों में है। नवा टाइम्स कहता है दिल्ली आई राजे पर बड़े नेताओं से बात किए बगैर ही लौट गईं। हिंदुस्तान लिखता है वसुंधरा की कुर्सी पर संकट समाप्त। अखबार ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पार्टी
सूत्रों
ने...
का भी अजीब खेल है कोई कहता है कि उनको इस्तीफा देना है, कोई कहता है कि बस बच गई।
फिलहाल हिंदुस्तान का कहना
फिलहाल
है कि...
बची हुई
जी जी कि उनको पार्टी ने ये भरोसा दिलाया कि ललित गेट के कारण उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। वहीं उजाला ने पीएम मोदी की तारीफ में किए गए ललित मोदी के ट्वीट को अपनी पहली खबर बनाया है। सुर्खी है पीएम बैटिंग करेंगे तो छक्का ही मारेंगे। अखबार के मुताबिक सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और प्रियंका को मुश्किल में डालने वाले ललित मोदी ने नमो की तारीफ की है। वहीं ललित मोदी के ट्वीट में रैना और जडेजा का नाम उछाले जाने की खबर दैनिक जागरण में है। उधर जनसत्ता की खबर है बिहार में भाजपा की लुटिया डुबो सकती है वसुंधरा और सुषमा। अखबार लिखता है कि राज्य में भाजपा के आंतरिक सर्वे में ये बात सामने आई है कि पार्टी को सिर्फ 47 सीटें मिलने जा रही हैं और इस खबर के बाद अखबार का कहना है कि भाजपा के साथ जो पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने का मन बना रही थी उनका विचार कुछ बदल सकता है।
और ये सारे घटनाक्रम को लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का गठबंधन भुनाएगा, राजनीतिक मामला है, जरूर भुनाएगा।
इसीलिए जिस तरह हमले किए जा रहे हैं वो चुनावी,
लेकिन भाजपा ने इस सर्वे के बारे में कुछ आधिकारिक रूप से कहा नहीं है।
जी। दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो न्यूजीलैंड से भारतीय उच्चायुक्त की वापसी, हिंदुस्तान ने सुर्खी लगाई है बदनामी, न्यूजीलैंड से उच्चायुक्त वापस बुलाया। अखबार ने बदनामी इसलिए कहा है क्योंकि उच्चायुक्त रवि थापर की पत्नी पर अपने रसोइये को प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं, हालांकि थापर इससे इनकार करते हैं। जनसत्ता लिखता है कि विदेशी मिशनों में तैनात भारत के 27 राजनयिकों के खिलाफ भ्रष्टाचार, उत्पीड़न और जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही के आरोपों में जांच चल रही है। इसके अलावा बाढ़ और भारी बारिश की तस्वीरें और खबरें लगातार अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। हिंदुस्तान में गुजरात के अमरेली की तस्वीर छपी है जिसमें एक शेरनी उफनती हुई जलधारा के बीच से अपने बच्चे को मुंह में लेकर भाग रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया अशोक कुमार जी। यहाँ पर जंग बहादुर जी का जिक्र करेंगे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, कहा कि हमारी और आपकी आवाज़ बहुत मिलती है,
हमारे श्रोता जंग बहादुर।
लेकिन देखिए जंग बहादुर जी, अगर आप कार्यक्रम सुन रहे हैं तो हम लोग दोनों बात कर रहे हैं,
अलग अलग आवाज शायद आपको पता चल रही होगी।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका। और अब बारी है न्यूज मेकर्स की। आज चर्चा प्रतापगढ़ के रहने वाले दो भाइयों राजू सरोज और ब्रजेश सरोज की, जिन्होंने IIT की परीक्षा पास की है। मजदूर पिता की इन बेटों की कहानी जब अखबारों में छपी तो इनकी मदद के लिए कई लोगों के फोन आए, लेकिन इन दोनों को एक फोन का इंतजार है। BBC के साथ बातचीत में दोनों ने अपने मन की बात बताई। राजू और ब्रजेश से बात की इंदु पांडे ने।
आप सबको ब्रजेश की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।
तो क्या आपने सोचा था कि ऐसा होगा?
काफी नहीं सोचा था मैम, ये अब क्या बताएं, मेहनत का मेरे फल है। इतना मतलब कि अभाव में पढ़ा तो लगता है ऊपर वाले को इतना मतलब खुशी हुई कि वो भी सोचा कि इन बच्चों को हम खुशी देके मतलब सबको खुश कर दें। सो ऑल रिटन इन माय डेस्टिनी।
अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप लोग?
हम 5 भाई हैं और एक बहन मेरी।
मतलब क्या क्या कैसे कैसे गुजरना पड़ा? देखो क्योंकि पढ़ाई बड़ा मुश्किल है, हम लोग भी पढ़े हैं, बहुत मुश्किल लगती थी।
मैम मतलब कि शुरू से मेरा, हम दोनों भाई का इतना इंटरेस्ट था पढ़ने में कि मतलब जब जुलाई में हल्का हल्का बारिश स्टार्ट हो जाती थी, बूंदाबांदी होती थी, तो मतलब बुक लेके कहानियां पढ़ने में और आर्टिकल्स पढ़ने में और इतना मजा आता था। और मैथ के क्वेश्चन जो देते थे सर, तो उसको होमवर्क वहीं स्कूल में दिया जाता था, तो वहीं क्लास में जो पीरियड खाली रहता था उसको कंप्लीट कर लेते थे। मतलब एक दरोगा आते हैं, दो सिपाही।
कैसा लगता है सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में रहना?
बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या करें, मतलब कभी एक समय ऐसा था कि मैं जब छोटा था तो एक अगर मतलब सिपाही भी आ जाता था तो हम लोग क्या करते थे, बुलहरी चलो डर गए एकदम भाग जाते थे। तो आज एसओ सर, दरोगा सर सबसे मतलब एकदम फ्रेंकली बात कर रहे हैं, तो लग रहा है कि हाँ, कि लोगों को भी लगता है कि अरे यार ये है पढ़ाई लिखाई का इम्पोर्टेंस। आज समझ में गांव वालों के, पहले तो फबतिया कसते थे, कमेंट मारते थे, तो लोगों को लग रहा है यार क्या बात है, अभी तो 18 साल ही इसके पूरे हुए हैं, इसमें तो पूरा मतलब कि शासन प्रशासन। तो यही है कि पढ़ाई लिखाई का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आ गया यहाँ गाँव में।
हाँ?
कि आज मैं देख रहा हूँ कि गाँव में जितने भी बच्चे जो डेली बागों में जाके खेलते थे, मोबाइल्स में फिल्में देखते थे, भोजपुरी सॉन्ग्स ये सब सुनते थे, आज पूरा माहौल ही चेंज हो गया। सभी नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा गाइड लेके, कोई लूसेंट, कोई प्रकाशन, कोई अरिहंत प्रकाशन, कोई पूजा साहित्य, सब लेके बैठ गया है, पढ़ रहा है, पूरा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा।
तो लोगों ने पथराव क्यों किया आपके घर पे?
बस मैम वही कि ईर्ष्या द्वेष जलसी हर जगह रहती है, तो मैम बस वही रीजन है। देयर आर 500 फैमिलीज बट नॉट अ सिंगल पर्सन हु आर इन गवर्नमेंट जॉब। मैम मैं राजू बोल रहा हूँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ।
बोलो।
मैं बहुत बड़ा अमिताभ बच्चन का फैन हूँ मैम।
राजू, अमिताभ, तो अमिताभ बच्चन ने तो आपको फोन किया नहीं?
नहीं किया मैम, वही एक दुख है मुझे।
आपको उनके फोन का इंतजार है?
जी मैम बहुत।
ओके, करेंगे, जब वो फोन करेंगे तो आप क्या कहेंगे उनसे?
बहुत खुश हो जाऊंगा मैम, बहुत खुश।
लौट तो नहीं जाएंगे धरती पे खुशी के मारे?
जी मैम लौट जाऊंगा।
तो आप अमिताभ बच्चन को बोलिए कि भाई आप हमें फोन कीजिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं।
जी अमिताभ जी सर, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ आपके फोन का, आज जरूर फोन करें, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ।
तो अच्छा ये बताओ, उनका कोई फेवरेट गाना है जो तुम सुनना चाहते हो?
गाना नहीं मैम, गाना नहीं मैम, उनके डायलॉग सुनना चाहते हैं, डायलॉग उनके बहुत बोलते हैं अपने स्कूल में। हमारे पास क्या है, मेरे पास माँ है, जा को राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जगवेरी हो, मुद्दा इलाक बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और डॉन का मैम एक याद है, डॉन का
बोलो,
ये बुढ़ाओ तो मर गए लेकिन हमारा के एक झंझट में फंसाए दे। अरे मैडम तही रुका हो, पान तो खाई लेता, हम बनारसी पान के बहुत खाए थे। दोनों लोग साथ में बधाई देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अब समय है खेल समाचारों का, आदेश कुमार गुप्त के साथ।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच कोलंबो में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां कल मैच के तीसरे दिन स्टंप के समय पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में दो विकेट के नुकसान पर 171 रन बना लिए थे। उल्लेखनीय है कि पहली पारी के आधार पर श्रीलंका को 177 रनों की मजबूत बढ़त मिली। कल स्टंप के समय अजहर अली 64 और अपना 16वां टेस्ट मैच खेल रहे यूनिस खान 23 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि इससे पहले अहमद शहजाद ने 69 रनों की पारी खेली। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की पहली पारी केवल 138 रन पर सिमट गई थी, जबकि श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 315 रन बनाए थे। उधर आईसीसी ने गेंदबाजों को राहत देते हुए एक दिवसीय क्रिकेट मैचों के नियमों में बड़ा परिवर्तन किया है। अब पहले 10 ओवर में कैच के लिए खिलाड़ी तैनात करने की अनिवार्यता समाप्त करने और बल्लेबाजी पावर प्ले को हटाने के फैसले के साथ ही पारी के अंतिम 10 ओवर में 30 गज के बाहर 5 खिलाड़ियों को रखने की छूट भी दी है। आईसीसी ने यह भी कहा है कि एक दिवसीय और 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सभी तरह की नो बॉल पर फ्री हिट मिलेगी। ये नियम 5 जुलाई से शुरू हो रही श्रृंखलाओं पर लागू होंगे।
कार्यक्रम के अंत में सुनिए मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में पुलिस की एक मॉक ड्रिल के दौरान भगवा झंडे के इस्तेमाल को लेकर विवाद गहरा होता जा रहा है। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सीप्रास ने ग्रीक लोगों से कहा है कि वो कर्जदाताओं की तरफ से दिए गए प्रस्तावों को जनमत संग्रह में जोरदार तरीके से ठुकरा दें। उधर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टीन लागार्द का कहना है कि यूरोजोन के बेलआउट पर ग्रीस का जनमत संग्रह अमान्य होगा, क्योंकि मौजूदा बेलआउट की अवधि 30 जून को खत्म हो रही है। ताइवान के अधिकारियों ने कहा है कि राजधानी ताइपे के पास एक वाटर पार्क में आग लगने से 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और नाइजीरिया के पूर्वोत्तर शहर माइदेगुरी में हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाला देवाशीष कुमार ने। पंकज प्रियदर्शी को अनुमति दीजिए 8 बजे विश्व भारती में आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।